ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಶ್ಚಿಕೀ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸ್ಕಂದದ ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 10. ಮೀನಾನ್ ಸುದುಃಖಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೀನಾನ್ ಮೀನಪತೋ ಪತೇ ಕೃಪಯಾ ಸೋಬರೀ ಪ್ರಾಹ ತತ್ರತ್ಯ ಕ್ಷೇಮಂ ಆಚರಂ. ಮೀನಾಂ ಸುದುಃಖಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೀನಾಂ ಸುದುಃಖಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೀನಾನ್ ಮೀನಪತೋ ಹತೇ ದೀನಾನ್ ಮೀನಪತೋ ಹತೇ ಕೃಪಯಾ ಸೋಬರಿ ಪ್ರಾಹ ತತ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಮಮಾಚರನ್ ತತ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಮ ಆಚರಂ ಮೀನಾಂ ಸುದುಃಖಿತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೀನಾನ್ ಮೀನಪತೋ ಹತೇ ಕೃಪಯಾ ಸೌರಭೇಸ್ತಾಃ ಕೃಪಯಾ ಸೌಭರಿಪ್ರಾಃ ತತ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಮಮಾಚರಂ. मछलियों का राजा हते मारे जाने से कृपया कृपावश शौभरी प्राह बोला तत्रत्य वहाँ पर रह रहे क्षेमं कुशलता आचरण आचरण करते हुए अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के दर्शन प्रभुपाद की अनुवाद उस सरोवर की अभागिन मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी देखकर सौवरी मुनि ने इस आशय से शाप दे दिया कि वे उस सरोवर के रहने वाले के कल्याण हेतु कृपापूर्ण कर्म कर रहे हैं। तात्पर्य इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब हमारी तथाकथित दया भगवान की आदेश से मेल नहीं रखती तो उसे केवल उत्पात मचता है। क्योंकि शौभरी ने उस सरोवर में आने से गरुड़ को मना किया था, अतएव काल्य उसमें घुस गया और उसने उसे अपना आवास बना लिया। इस तरह सरोवर की सभी मछलियों पर शाप आ गिरा। ओम ज्ञानानंदस्य ज्ञानार्जुनशलाकया चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपप्रदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणगुणाकान्तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराजा कृष्णपादान् सगणरिताः श्रीशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्तं वस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि सौवरी मुनि गरुड़ की वास्तविक जो परिस्थिति है उसको समझ नहीं पाए। जब समझ नहीं पाए तो उन्होंने अपना मर्यादा को भूल गए। जब मर्यादा को भूल गए मर्यादा का भूल के तो उन्होंने देखा कि ये जो गरुड़ है वहाँ के मछली को खा गया। ये मछली कौन था? ये उधर निवास करने वाले जितने मछली थे उन मछलियों का राजा था। गरुड़ो भक्षय इप्सितम, उन्होंने कहा मत खाओ, जाओ इधर से। और दूसरा, ये सुनने के बाद भी गरुड़ ने क्या किया? उन मछलियों को खा लिया। उस मछली का जो राजा था उसको खा लिया। तो ये बात देख के क्या हुआ उसका वर्णन आज के श्लोक में है। जैसे मछलियों का जो राजा मर गया गरुड़ ने, क्योंकि उनको खा लिया था, सारे जितने मछली थे मीनां सुदुखितां दृष्ट्वा, तो सौवरी मुनि ने क्या देखा, तो उन्होंने सारे अन्य मछली जो हैं वो सुदुखितान बहुत दुखी थे, दृष्ट्वा उन्होंने देखा, उनके दुखों को देखा, देख के दीनान मीनपतो हते। वो क्यों दुखी थे, क्योंकि मीनपतो हते मतलब क्या है, उन मछलियों का जो राजा था, बड़ा मछली था वो, बहुत शक्तिशाली था, मीन पतो हते वो मरने की वजह से बड़े दीन हो गए थे। मान लो कि आँख को जो रक्षा करने वाले अगर मर जाता है, चले जाता है, तो निश्चित रूप में दीन हो जाते हैं, कौन रक्षा करेगा, बहुत घबराहट होती है। तो सारे अन्य मछलियों को घबराहट होने लगी, हमारा जो मछलियों का राजा इतना बड़ा मछली था, इतना शक्तिशाली था, गरुड़ उसको खा लिया तो हमको तो कभी खा सकता है, तो उनके डर के मारे भयभीत थे और बहुत दुखी थे, अपना प्राण की वजह से दुखी थे। इनको देख के दृष्ट्वा, देखने के बाद क्या हुआ, कृपया सौबरी प्राहा, कृपया मतलब बड़े दया आई, किन के ऊपर दया आई, मछलियों के ऊपर दया आई। जब इन मछलियों के ऊपर दया आई तो उन्होंने क्या किया, तत्रत्य क्षेमम, उन्होंने सोचा इन लोगों की, अन्य जो मछली, कम से कम राजा तो मर गया, इन लोगों को बचाना पड़ेगा, इन लोगों का क्षेम, उनको हित के लिए प्राहा क्षेमम आचरण, उनको क्षेम, उनको हित करने के लिए सौबरी मुनि ने प्राहा मतलब उन्होंने आगे कुछ कहा। आगे क्या कहा उस श्लोक में कल दिखता है कि किस प्रकार सौबरी मुनि ने शाप दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जिसके ऊपर हमने कुछ प्रकाश एक दो दिन पहले भी डाला था। बात यह है कि दया कृपा वो जो है किसके ऊपर दिखाना चाहिए, कौन दिखा सकता है, और तीसरी बात यह है कौन सी स्तर में कृपा या दया दिखाना चाहिए। जब तक ये तीन बातें हमको स्पष्ट नहीं होता है तब तक उसको वास्तविक दया नहीं माना गया है। ये भगवद गीता का जो शुरुआत ही इसी प्रसंग से होता है या इसी प्रकार का सिद्धांत से होता है। आप सबको मालूम है प्रवृत्ते शशु संपाते धनुध्या फांगवा, अर्जुन अपना बाण को निकाल के धनुष के ऊपर रख के प्रवृत्ते शस्त्र संपाते भी बाण छोड़ने ही वाले थे, तब उन्होंने कृष्ण से कहा हे कृष्ण, सेनाओं और भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए खड़ा है। लेकिन जैसे वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया कृष्ण, तो अर्जुन ने देखा दूर से, किन किन को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने बुद्धों को देखा, अपने पितामह मित्रों को देखा, इन सब को देख के क्या हुआ, कृपया पर्याविष्टो विशीदंतम इदम वचः। तो कृपया पर्याविष्टो, अंतर ये था अर्जुन के अंदर कृपया, उनके अंदर दया आई, तो दया के वजह से विशीदंतम बड़े दुखी होके बोलने लगे, किससे, कृष्ण से। वो दया अर्जुन में जो आई, वो दया की वजह से अर्जुन रोने लगा, दुखी होने लगा, दुखी होके बड़े नम्रता के साथ कृष्ण से बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े इधर अंतर ये है, सौबरी मुनि को क्या हुआ, वही दया हुई, उनको भी दया हुई, लेकिन वो दया की वजह से उनको क्रोध आया, किसके ऊपर क्रोध आया, पार्षद के ऊपर क्रोध आया। हमने कल चर्चा किया, परसों चर्चा किया, किस प्रकार सौबरी मुनि ने दो अपराध पहले कर चुके हैं, क्या है वो दो अपराध, पहला आदेश देना, उनके सीनियर है गरुड़, कौन है, भगवान के पार्षद है, उनके उनसे अनेकों गुणा उनके बहुत वरिष्ठ है, और ये सौबरी मुनि ने सोचा कि मैं आदेश दूंगा, उनको आदेश दिया इधर मत आओ, मछलियों को मत खाओ। दूसरा अपराध क्या था कि गरुड़ का जो स्वाभाविक आहार है मछली, उनको उनसे वंचित करना, ये दूसरा अपराध था। अभी ये दो अपराध की वजह से क्या हुआ, उनकी जो आध्यात्मिक विचार है वो खत्म हो गई। जब आध्यात्मिक विचार खत्म हो गई तो उन्होंने तीसरा अपराध कर बैठा। ये अपराध का स्वभाव ये है, एक अपराध जो है दूसरे अपराध को प्रेरित करता है, दूसरा अपराध जो है तीसरे अपराध के लिए प्रेरित करता है। तो ये अपराधों की जो सिलसिला होता है ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि पाप एक होता है, अपराध कुछ और होता है। पाप जो करता है उसको कर्म बंधन लगता है, कर्म बंधन मतलब उसको फिर वापस जन्म लेना पड़ता है और उनको सुख और दुख या जो भी है वो अनुभव करना पड़ता है। ये पाप करने से उनकी आध्यात्मिक जो चीज़ है वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन अपराध करने के द्वारा आध्यात्मिक जो ज्ञान जो प्राप्त किया है या भगवान कृष्ण के प्रति जो रुचि जो प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अपराध जो है बहुत डेंजरस माना गया है। जैसे पाप करने से उसका कुछ ना कुछ इलाज है, इलाज क्या है, वो पाप का प्रायश्चित होता है या उसको अनुभव कर लेता है, अनुभव करने के द्वारा पाप जो है मिट जाता है, पाप का परिणाम जो है पाप का फल मिट जाता है। लेकिन ये अपराध जो है इतना डेंजरस है कि वो हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिक बल है, आध्यात्मिक विचार जो है उसको खत्म कर देता है। अभी शौबरी मुनि का भले ही वो तपस्या कर रहे थे, वो उन्होंने जल के नीचे नल जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। इतना परिपूर्ण होने के बाद भी उन्होंने ये गरुड़ की जो अवस्था को नहीं पहचानने की वजह से उन्होंने ये दो अपराध किया है। देखा जाए कि पहले के दो अपराध इतने बड़े अपराध नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये दो अपराध की वजह से उनका आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है, उनका जो आध्यात्मिक विचार है वो नष्ट हो गया। जब वो नष्ट हो गया तो क्या हुआ, वो बड़ा अपराध कर बैठा। ये बड़ा अपराध जो है वो क्या करता है, वो कृष्ण के प्रति जो रुचि है उसको नष्ट कर देता है। अपराधों का भी अलग अलग स्तर होता है, कहाँ कहाँ का कौन से प्रकार के अपराध है, ये इसके विषय में श्री विश्वनाथ ठाकुर माधुर्य कादंबिनी में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। कुछ अपराध होते हैं वो साधना करने से ही निकल जाता है, कुछ अपराध होते हैं भाव भक्ति के स्तर में निकल जाता है, कुछ अपराध होता है जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होता है तब तक वो अपराध नाश नहीं होते। खास करके इन सारे अपराधों में जो वैष्णव अपराध होता है वो क्या है, वो प्रेम के स्तर में ही संपूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तभी ये वैष्णव अपराध का जो परिणाम है वो नाश होता है। यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने तक इतना भाव भक्ति के स्तर में भी हमको ये वैष्णव अपराध के जो परिणाम है उसको भोगना पड़ता है। तो वैसे छोटे मोटे जो अपराध है वो तो साधना से या भाव भक्ति के द्वारा ही हम उसको नाश कर सकते हैं, लेकिन ये जो वैष्णव अपराध है ये प्रेम प्राप्त करने के स्तर तक वो हमारे पीछे फड़ा देता है, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो सबसे पहला अपराध का फल ये है कि आध्यात्मिक विचार विवेक, आध्यात्मिक विवेक जो है नष्ट हो जाता है। तो अभी प्रसंग वापस हम जाएंगे भगवद्गीता में, भगवद्गीता में भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया, कृपया परया विष्णु, इस श्लोक में भी यही शब्द आया, कृपया शौबरी प्राह, कृपया मतलब दया। तो ये दया जो है वैसे देखा जाए कि सत्वगुण का लक्षण है, तो ये सत्वगुण का लक्षण होने पे तो अच्छी बात है ना। तो सत्वगुण में रहेगा तो आध्यात्मिक विचार होना चाहिए, आध्या सत्वम संजायते ज्ञान, सत्वम संजायते ज्ञान मतलब सात्विक व्यक्ति को ज्ञान प्रकाशित होता है। तो भगवद्गीता में हमने देखा कि अर्जुन जो है, अर्जुन के अंदर ये सात्विक विचार थी कि मुझे अपने परिजनों के ऊपर दया आ रही है, युद्ध क्या करना, वैराग्य इत्यादि सत्वगुण थे। तो इसलिए भगवद्गीता के पहले अध्याय में अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ये जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन जो है इनके अंदर जो सत्वगुण की वजह से या उनके अंदर ये महान गुण दिखाई पड़ रहा है, वैराग्य दिखाई पड़ रहा है, दया दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महान भक्त है। तो महान भक्त होने के नाते अर्जुन के अंदर ये सब अच्छे गुण दिखाई पड़ रहे हैं। और तुरंत अगले तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन जो है ये जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं अर्जुन के अंदर, ये सारे लक्षण जो हैं वो भौतिक आसक्ति से उत्पन्न हुआ लक्षण है। अब इसको कैसे समझेंगे? एक तरीके से अर्जुन के अंदर दया की भावना थी, जो सत्वगुण का लक्षण है। दूसरी ओर देखेंगे, एक जगह अर्जुन जो है वो अज्ञान में है या भौतिक आसक्ति द्वारा वो पीड़ित हैं, तो हम इन दोनों को कैसे समझेंगे? इस प्रकार समझ सकते हैं, अर्जुन बहुत अच्छा व्यक्ति था लेकिन क्या था, अज्ञानी व्यक्ति था। वैसे तो पार्षद है लेकिन फिर भी उस प्रसंग में उन्होंने इस प्रकार अपने आप को पेश किया। किस रूप में पेश किया? कि एक अच्छा अज्ञानी व्यक्ति के रूप में पेश किया, इज ए वेरी गुड इग्नोरेंट पर्सन। तो भगवान उस प्रकार अर्जुन को क्यों पेश किया हमारे सामने, ये बताने के लिए कि केवल अच्छा व्यक्ति होने मात्र से आध्यात्मिक व्यक्ति हम नहीं कह सकते। हाँ, ये बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होने की वजह से वो अज्ञानी है। तो अज्ञान में बहुत सारे गलत विचार होता है। तो अर्जुन के जितना ही प्रवचन था पहले अध्याय में, वो सारा प्रवचन क्या था, अज्ञान के ऊपर आधारित था। लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए, अर्जुन का जो प्रवचन बहुत ज्ञान से युक्त था। उन्होंने 5 कारण दिए मैं क्यों युद्ध नहीं करूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो दया की वजह से नहीं करूँगा, ने कहा पाप लगता है ऐसा। तीसरा कारण ने कहा कि अगर मान लो कि मैं युद्ध जीत भी लूँगा तो मैं कैसे भोगूंगा, क्योंकि परिवार वालों के बिना भोगना तो हो ही नहीं पाएगा। और चौथा कारण ने कहा, सामाजिक कारण दिया, युद्ध होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, समाज में सब जो स्त्रियाँ जो है वो असुरक्षित रहेंगे और स्त्रियों के अंदर धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से वर्ण संकर होंगे, वर्ण संकर जहाँ होंगे सब नारकीय परिस्थिति रहेगा, उत्त पिंडोद का क्रिया, पिंडदान इत्यादि बंद हो जाएगा और जो नरकीय व्यवस्था को या नरकीय वातावरण को बनाने वालों का गति कहाँ है, नरक में रह जाएगा, नरके नियतम वासो। तो अर्जुन ने ये अनेकों कारण दिया, खास करके 5 कारण दिए। तो ये 5 कारण में ऐसा देखा जाए, खाली अर्जुन का चर्चा किया जाए तो लोगों को ऐसा लगे कि कितना अच्छा प्रवचन दे रहा है। देखो इसके ऊपर आधारित होकर लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, बड़ा पॉलिटिशियन है। अर्जुन बेचारा अच्छा व्यक्ति था, उसको दिमाग खराब कर दिया गीता सुना के। अर्जुन शांति चाहता था, दया दिखाना था, कृष्ण ने क्या किया, उनको बहका के उनके अंदर क्रोध को भरा और युद्ध कराया। इसलिए भगवद्गीता जो है वो आतंकवाद का ग्रंथ है, टेररिस्ट लिटरेचर है, इसको बैन करो। ठीक है ना, अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए बराबर है टेररिस्ट लिटरेचर है कि नहीं। अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे भगवद्गीता जो है पक्का टेररिस्ट लिटरेचर है। ये एक व्यक्ति शांति चाहता था, एक दूसरा व्यक्ति उसको बहका के युद्ध करा के उसको भाइयों के मरवाया, ये क्या है, ये टेररिज्म है तो नहीं तो क्या है, ये आतंकवाद है ना। आतंकवाद मतलब क्या है, आप जाके उनको बहका हो, नहीं नहीं उसको मारो आध्यात्म के नाम पे। तो ये कैसे समझे इसको, हाउ टू अंडरस्टैंड। बात ये है, इस श्लोक में श्री रविशंकर ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि वो दया जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है वो दया दया नहीं है, बल्कि क्या है वो वायलेंस, हिंसा है। एक और हिंसा, हिंसा उसकी परिभाषा क्या करें, हिंसा मतलब क्या है, वो कार्य जो भगवान से हमको दूर लेके जाता है उसको हिंसा कहा गया है। और अहिंसा क्या है, वो कार्य जिसके द्वारा हम भगवान के नजदीक में जाते हैं उसको अहिंसा कहा गया है। अर्जुन जो है वो अहिंसा चाहता था लेकिन वो अहिंसा जो है भगवान की इच्छा के विरुद्ध होने की वजह से वो अहिंसा वास्तविक हिंसा मानी गई है। और दूसरी ओर वो हिंसा, वो वायलेंस जो भगवान के इच्छा के अनुसार है वो वास्तविक अहिंसा है। अभी प्रभुपाद जी हिंसा अहिंसा के परिभाषा को देते हुए एक जगह कहते हैं, जो व्यक्ति अहिंसा मतलब क्या है, अहिंसा मतलब भगवान का भक्ति का प्रचार करना, भगवान का नाम का प्रचार करना ही वास्तविक अहिंसा है, वास्तविक नॉन वायलेंस। और दूसरी ओर एक व्यक्ति है वो शांत है बिल्कुल, कोई दूसरों को कोई गाली नहीं दे रहा है, दूसरों को कोई दुष्ट दुर्व्यवहार नहीं करता है और प्रचार नहीं करता है। भले ही वो शांति से जी रहा है, वो किस सबको मान सम्मान देता है और सबके साथ मित्रता बना के रखता है और कोई वायलेंट एक्टिविटी, किसी को मारना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको हिंसक कहा गया है, हिंसा कर रहा है। क्यों? उसके पीछे रहस्य है, इस संसार में सभी लोग दुखी है, उसका कारण क्या है? कृष्ण भक्ति का अभाव। यानी कृष्ण भक्ति का अभाव के वजह से भी दुखी है। अगर आप कृष्ण भक्ति आपके पास है, अगर आप उसको नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप हिंसा कर रहे हो। ये वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, हिंसा और अहिंसा का जो परिभाषा परिभाषा का पराकाष्ठा है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हिंसा और अहिंसा का परिभाषा इस प्रकार दिया नहीं है। साधारणतः लोग क्या सोचते हैं? हिंसा मतलब किसी को मारना, किसी को पीटना, इस प्रकार सोचते हैं, किसी को कुछ गलत करना, ये हिंसा सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा व्याख्या दिया कि हिंसा मतलब कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना हिंसा है। भले आप शांति से बैठे हो और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना ही अहिंसा है। और कृष्ण भक्ति के प्रचार में किसी को मारपीट भी करना पड़ता है, वो अहिंसा मानी गई है। जैसे अर्जुन के लिए, अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उनके उसका परिणाम क्या हुआ? जो भी कृष्ण के सामने मरे उनका उद्धार हुआ, उनको ऊंचा गति मिला, कुछ ना कुछ तो गति मिला, ऊंचाई गति मिला। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं भौतिक स्तर में दया करूंगा, वो दया जो है वो उल्टा रिएक्शन करता है। जो अच्छा करने जाएंगे बुरा होता है। आपने बहुत सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मैं लोगों का अच्छा करने जाता हूं लेकिन बुरा ही होता है, लेकिन नहीं, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है लोगों का। जो भी आज तक आप पूछो, कोई अच्छे व्यक्ति, जो भी तथाकथित एक अच्छा व्यक्ति है भौतिक दृष्टिकोण से, उनके पास जाके पूछो, उनका एक ही दुख रहता है, प्रभु जी मैंने क्या क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, मैं अच्छा करने गया, खुद मेरा भी बुरा हुआ और क्या हुआ, उसका भी बुरा हुआ। तो वो हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, एक माँ है, बच्चे से बहुत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि वो सोचती है वो बुखार आया है, डॉक्टर के पास लेके जा रहा, डॉक्टर क्या प्रेम करता है, क्या जानता है मेरे बच्चे को, इस बच्चे का इलाज मैं ही करूँगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ उसको। तो इसलिए वो खुद गई दुकान में, जाके दवाई लेके आई, दवाई ला के खिलाई बच्चे को। कौन सा दवाई लाई? जो सबसे महंगी दवाई लाई, उसका हुआ जुकाम लेकिन लाया कैंसर का दवाई, तो क्या होगा बताइए? तो उसका भी बुखार बढ़ा, उसका भी दुख बढ़ा और खुद का भी दुख बढ़ा। अभी इधर सौगरी मुनि का दया की वजह से क्या हुआ देखिए, इन मछलियों को दया करने गया, दया किया, बोला गरुड़ को बोला कि इधर नहीं आ सकते हो, तो गरुड़ ने आया तो कौन आके बैठ गया? काली आके बैठ गया। कम से कम गरुड़ क्या था, कभी कभी आया करता था, एक आध मछली को खा के चले जाते गरुड़, लेकिन अभी कालिया तो आके बैठ ही गया उधर। यानी जो दया दिखाना चाहते थे शौबरी मुनि, जिस कारण से उन्होंने दया दिखाया, मछलियों को रक्षा करने के लिए दीन है इन लोग, तो इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से जो दया जो है वो दोनों को हानिकारक है, जो दिखा रहा है उसको भी हानिकारक है, जो प्राप्त कर रहा है उसको भी हानिकारक है। मटीरियल कंपैशन, कंपैशन बेस्ड ऑन मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ इज डेंजरस, डेंजरस। दोनों किन के लिए? जो दिखा रहा है उसके लिए भी घातक है और जो प्राप्त कर रहा है, जो दया का पात्र होता है उसके लिए भी घातक है। तो इसलिए ये भौतिक दृष्टिकोण से जो दया है उससे उससे बच के रहना चाहिए, ना दिखाना चाहिए ना लेना चाहिए ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। कभी कभी एक बार ऐसा हुआ, भक्तों के बीच में भी कभी कभी ऐसा एक दया आ जाती कोई भक्त के ऊपर, तो वो भक्त क्या करता है, उसको मदद करूंगा करके वो मदद करने जाता है। जब मदद करने जाता है कुछ समय के बाद वो दोनों का परिणाम विपरीत हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने मदद किया वो भौतिक दृष्टिकोण से मदद किया है, इन मटेरियल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मदद नहीं किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया गया कार्य को ही वास्तविक परिणाम प्राप्त होता है, भौतिक दृष्टिकोण से किया गया जो परिणाम है या जो जो कार्य है, जो दया भी क्यों ना हो, कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, कितना भी अच्छा चीज क्यों ना हो, क्योंकि वो भौतिक होने की वजह से वो केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। इट इज जस्ट गोइंग टू गिव ट्रबल टू एवरीवन। क्योंकि ये जो भौतिक जगत बनाया है ये किसके लिए बनाया है, हमको दुख देने के लिए बनाया है। तो भौतिक दृष्टिकोण से आप कितना भी अच्छा कुछ करने जाओ वो केवल दुख ही देगा। इट इज जस्ट गोइंग टू गिव यू मिजरी। ये एक जो कंप्लेंट जिसके बारे में हमने भी सुना, मैं अच्छा करने गया मेरा ही बुरा हो गया, तो उसने मेरा ही बुरा किया। तो इसके ऊपर विचार किया जाए तो उसने आपको बुरा क्यों किया, क्योंकि आपकी अच्छाई उसके लिए बुराई बन गई, इसलिए आपको बुरा किया। दैट इज वाई नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रसंग है ये हमारे जो भक्तों के बीच में भी ये लागू होता है। कभी भी आप किसी को भी मदद करने जाओगे या प्रचार भी करने जाओगे, ये पूरा आध्यात्मिक स्तर में करने की आवश्यकता है। अगर आध्यात्मिक स्तर में भी अगर प्रचार नहीं करेंगे, थोड़ा सा भौतिक चेतना से किया जाए, तो क्या होगा, वो प्रचार भी थोड़ा सा बैकफायर हो सकता है। इसके थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बात ये है कि हमारा विचारधारा, हमारी जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो कभी भी उसका सफलता प्राप्त नहीं होगा। अभी इधर शौबरी मुनि के विषय में और एक कहा गया है, कृपया शौबरी प्राह तत्रत्य क्षेमम। तो क्षेमम मतलब क्या है, इन मछलियों की क्षेम, उन मछलियों का अच्छा हो, उस प्रकार उनका मन में विचार था, इन मछलियों को मैं अच्छा देखभाल करो, इनको दुख नहीं होना चाहिए। तो शौबरी मुनि ने अपनी शक्ति के द्वारा उन्हें गरुड़ को शाप दे दिया, लेकिन उल्टा क्या हुआ, कालिया आके बैठ गया उधर। उससे क्या होता है, उससे क्या पता लगता है, उससे ये पता लगता है कि आपको किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करना है। खास करके हमारी आंदोलन दया का ही आंदोलन है, दया का आंदोलन होने की वजह से कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर इस दया की जो आंदोलन को नहीं देखा जाए तो हम थोड़ा भौतिक दृष्टिकोण से करने बैठ जाएंगे। तो सावधान होना चाहिए कि जब आप प्रचार करने जाते हो तो हमको दूसरों के कर्मों से कुछ देना देना नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो सुख या दुख का अनुभव कर रहा है, तो आप उनके कर्मों को सुधारने मत जाइए उनको, क्योंकि उन्होंने अपना जो कर्म किया पिछले जन्मों में जो भी किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति बहुत दुखी है अपने अपने पिछले किए हुए कर्मों की वजह से, आप सोचोगे थोड़ा सा इसका अच्छा कर्म हो जाएगा, उसको अच्छा हो जाएगा तो भक्ति कर पाएगा। नहीं, नेवर इंटरफेयर इन टू एनीबडीज कर्म। इधर देखा जाए शौबरी मुनि का भी यही था, गरुड़ का स्वाभाविक आहार है मछली, ठीक, और मछलियों का कुछ कर्म है, कोई ना कोई पिछले जन्म में कोई ना कोई कर्म करके इसकी वजह से उस प्रकार है, और गरुड़ अपना 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 पार्षद है लेकिन अपना कार्य कर रहे हैं, और शौबरी मुनि को इंटरफेयर किया, उनके कर्मों के बीच में उन्होंने दखलंदाजी किया कि कर्मों की जो व्यवस्था है भगवान ने किया है, अगर आप अपना दया दिखाने के लिए एक कर्मों के बीच में इंटरफेयर करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक, यू गेट ए शॉक। शौबरी मुनि को भी शॉक लगा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इनको मैं बचाऊंगा, इनको मैं क्षेमम, उनको मैं रक्षा करूंगा, अगर उनके कर्मों में रक्षा नहीं है, इस प्रकार रहने की है, कोई उनके पति के बिना राजा के बिना रहने की ऐसी अवस्था है तो उनको वैसे ही रहने दो, और उनको उद्धार अगर करना ही है तो कैसे करना चाहिए था, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना प्रदान करके करना चाहिए। तो नेवर एवर इंटरफियर इन टू एनी बडीज कर्म। तो क्या होगा, कर्म के बीच में अगर पड़ोगे तो इतना भयानक सा बैकफायर होगा, तो हम उसको संभाल नहीं सकते। ये बात है। और आगे की बात ये है इसी प्रसंग में कि जब कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है या दया दिखा रहा है, खास करके हम भक्तों के विषय में कह रहे हैं, ये प्रचार करने जाते हैं, भले ही हमारा दया का आंदोलन है, लोगों के ऊपर दया दिखाना चाहिए, लेकिन क्या विचारधारा से जाना चाहिए? ये विचारधारा के द्वारा जाना चाहिए कि मुझे ये प्रचार की आंदोलन में भाग लेने के लिए जो मौका मिल रहा है, ये दूसरों को दया दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप के ऊपर दया दिखाने के लिए, अपने आप के ऊपर दया दिखाने के लिए है। असल में ये दया कौन दिखा सकता है? हु कैन बी कंपैशनेट? केवल एक ही व्यक्ति दया दिखा सकता है, वो भगवान। और जो भगवान के जो कृपा के प्राप्त रहे, शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य हैं, वही लोग कृपा कर सकते हैं। एक बार कोई मंदिर में था, मैं ऐसे पूछा एक ब्रह्मचारी से, प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? प्रभु जी मेरा एक प्रोग्राम है, थोड़ा उनके ऊपर भी दया दिखाना है ना भले ही मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी जाके थोड़ा उनका भी उद्धार हो जाए। तो मैं हंस के ले लिया, अगले दिन ब्रह्मचारी क्लास था तब उस पर पूरा इसी टॉपिक के ऊपर लिया। जब आप किसी के घर में जाके या कोई प्रोग्राम में जाके किसी को आप कृष्ण कथा सुना के आप उनको उद्धार करने नहीं जा रहे हो, खुद को उद्धार करने जा रहे हो। उनका उद्धार होगा कि नहीं, लेकिन अपना तो हो ही जाएगा, क्योंकि क्योंकि आप कृष्ण के बारे में कुछ बोल रहे हो। और उनके ऊपर दया दिखाने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने आप के ऊपर दया दिखाने जा रहे हो, क्योंकि आपको कृष्ण के बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। अपने आप को नियुक्त कर रहे हो कृष्ण की सेवा में। कृष्ण की सेवा मिला करके आपको बड़े कृतार्थ होना चाहिए, आप होना चाहिए कि मेरे ऊपर दया है आचार्यों की, मेरे ऊपर दया है उन लोगों की, क्योंकि मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे कृष्ण के बारे में बोलने की मौका दे रहे हैं। क्योंकि केवल प्रभुपाद ही कृपा कर सकते हैं, केवल प्रभुपाद ही दया दिखा सकते हैं। शुद्ध भक्त होते हैं वही दिखा सकते, जो अनर्थ युक्त व्यक्ति जो है, अनर्थ से परिपूर्ण हमारा हृदय है, वो क्या दया दिखा सकता है? ही के नॉट। वो केवल एक शुद्ध भक्त के दया के पात्र बन सकता है, और उनके जो दया का प्रचार की माध्यम बन सकता है, बल्कि वो खुद जो है वो उनके पास कोई दया नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, वो एक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना चाहोगे, तो क्या उसको वो दिखावा कहा जाता है? वो डुप्लीकेट होगा। इट्स ए लॉजिक। हमारे हृदय में दया की भाव है ही नहीं, वास्तविक दया जो है वो नहीं है, लेकिन नहीं होने पर भी दिखाने चाहेंगे तो क्या दिखाएगा व्यक्ति? डुप्लीकेट चीज दिखाएगा, असली चीज तो है नहीं। असली चीज है किसके पास? असली दया किसके पास है? वो भगवान के पास है, प्रभुपाद जी के पास है, शुद्ध भक्तों के पास है। तो शुद्ध भक्तों के पास है, वही दिखा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब शुद्ध भक्त अपनी दया दिखा रहे हैं यानी आंदोलन के प्रचार में, तो हम केवल थोड़ा सा भाग लेके हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। मान लो कोई गंगा में नहा रहा है, आप इधर नहा रहे हो, आगे आप नहा रहे, कोई और नहा रहा है, तो बोले देखो मैं पानी छोड़ रहा हूं आपके लिए मेरी वजह से आपको पानी मिल रहा है, देखा ये तो मूर्खता वाली बात है, इट इज फुलिशनेस। तो दया के स्रोत है, दया का सार है कृष्ण, करुणा सिंधु बोलते ना, करुणा के सिंधु कृष्ण है, और उनके जो कृपा प्राप्त है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति बोलते हैं, कृष्ण का कृपा का श्री मूर्ति है, शुद्ध भक्त आचार्य है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, वो ही एकमात्र है। दे आर द ओनली पीपल हु कैन एक्चुअली शो कंपैशन। तो एक बार भक्तों ने चर्चा करते हुए मैंने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उनकी दया है, उनकी कंपैशन है, और हम लोग क्या है, भगवान की सेवा करके अगर कंपैशन नहीं तो कम से कम हमारा पैशन थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है एटलीस्ट लेट अस रिड्यूस अवर पैशन, इफ नॉट कंपैशन लेट अस रिड्यूस अवर पैशन। पैशन मतलब रजोगुण,
कम मतलब समझते हिंदी में कम। तो भगवान की सेवा करते करते हमारे अंदर रजस तमो भावना कम हो जाए वही बड़ी बात है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। दया वगैरह जो बहुत ऊंची चीज है, दया जो है बहुत ऊंची चीज होती है। इट इज एक्सक्लूसिवली द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर डिवोटीज। तो जब कोई हम जैसे कोई जाके प्रचार करता है, ये समझना चाहिए कि वो दया के ऊपर प्रेरित होके नहीं, दूसरों को दया दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप के ऊपर दया दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। हमारे अंदर जो पैशन है वो कम होने के लिए है। अस्तित्व में, वास्तविकता में जगत को उद्धार करने वाले कौन है? आचार्य होते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जब प्रचार करने जाते, कोई भी सेवा करने जाते या डेटी वर्शिप करने जाते हैं, हमेशा ये नम्र भाव को बना के रखना चाहिए, मैं दया का पात्र हूँ, मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं होता कौन हूँ दया दिखाने वाला? हु आम आई टू शो कंपैशन? हु आम आई टू डिलीवर? ये सौबरी मुनि ने सोचा कि क्षेमाया, मैं कृपा करूंगा, लेकिन उन्होंने ये भूल गया कि मैं खुद कृपा का पात्र हूँ। मुझे पानी के अंदर रहना पड़ता है ध्यान लगाने के लिए भगवान को, थोड़ा सा बाहर जाऊंगा माया से डर लगता है, इसलिए तो पानी के अंदर गया ना। वो बात भूल गया, मेरी स्थिति कुछ ऐसी गड़बड़ है तो मैं दिखाऊंगा क्या? व्हाट इज शू? अभी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोले, मैं तो खुद कंगाल हूं, मैं दूसरों को क्या दया दिखाऊंगा? मैं अति दीन हूं, इसलिए हे चैतन्य महाप्रभु, मैं कृपा का पात्र हूं, दया का पात्र हूं। दैट इज वाई इस प्रकार हर सारे भक्तों को ये शौबरी मुनि का ये जो चीज है उससे थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। आपको नौवें स्कंद में आगे शौबरी मुनि को क्या हुआ सबको मालूम है, यू नो वेरी वेल। तो पानी के नीचे थे, तुमने जिस मछलियों के ऊपर दया दिखाया वही मछली उनका पतन का कारण बना। खैर, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसा एक योजना बनाया जिसके द्वारा हम सबको शिक्षा मिले। तो मछलियों को भी तकलीफ हुआ, शौबरी मुनि को तकलीफ हुआ। तो भौतिक स्तर की दया जो है वो सबको तकलीफ देने वाली बात है। आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो क्या कर रहा है, वो भौतिक दृष्टिकोण से दया दिखाना चाहता है। अनाथालय खोल रहा है, वृद्धाश्रम खोल रहा है, वो खोल रहा है, ये खोल रहा है, नहीं को खोल रहे हैं, लेकिन वो जो उसमें रहते हैं उनको भी तकलीफ है, जो करते हैं उनको भी तकलीफ है। एवरीबडी इज इन सफरिंग। वो केवल गाँव को बढ़ा रहे हैं, जो दुखों को बढ़ा रहे हैं दया के नाम पर। तो इसलिए सारे भक्तों को ये जरूर विचार करना चाहिए कि आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ मर्सी, नॉट द कॉज ऑफ मर्सी। मैं कौन हूं? गुप्रा का पात्र हूं, मैं दिखाने वाला नहीं हूं। अगर दिखा सकते हैं, कौन दिखा सकते हैं? केवल कृष्ण हैं और शुद्ध भक्त यही कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। रिक्वेस्ट एनी क्वेश्चन? हाँ, बराबर है। हाँ हाँ, अच्छा, वैष्णव सेवा और ये तो वैष्णव सेवा जो है वो वैष्णव सेवा करके मान के करेंगे। सेवा किसके लिए करते हैं आप? वाई आर डूइंग सेवा? भगवान की हो, वैष्णव की हो, सेवा किसके लिए करते हो? किसकी फायदा के लिए करते हो? भगवान का पूजा कर रहे हो, ठीक है, वो किसकी फायदा के लिए कर रहे हो? हाँ हाँ, किसकी फायदा? अपने लिए ना, अपने फायदा के लिए कर रहे हैं ना, ताकि मेरी भक्ति बढ़े, मेरी इंद्रियां नियंत्रण में रहे। तो जब भगवान की सेवा मिलती है तो वो किसके लिए है? भगवान को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? फर्क किसको है? हमारे लिए। तभी वैष्णव सेवा भी करेंगे वो किस भावना से करना चाहिए? ये मेरे लिए एक सेवा का मौका है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। देखो मैंने इतना सेवा किया ना, इसके वजह से वो बड़ा हुआ है, इसके वजह से उसका उद्धार हुआ है, इसके वजह से वह बेला बहलाई हुआ है उसका। अगर मैं नहीं करता ना, उसका क्या होता मालूम है? इसका क्या हालत होता? शौबरी मुनि ने यही सोचा, अगर मैं गरुड़ को इधर से मना नहीं करूंगा, ये बेचारे मछलियों को क्या हो जाएगा, ये मर जाएंगे। वो खुद भगवान बनने के लिए प्रयास किया। समस्या है, हमेशा ये ध्यान में रखे कि वैष्णव सेवा हमारी फायदा के लिए किया जाता है, हमारे हित के लिए किया जाता है। भगवान की सेवा जो हम भी करते हैं, पूजा करते हैं, वो किसकी हित के लिए है? मेरे हित के लिए। इसलिए मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, ये बोलना ये भी भौतिक दृष्टिकोण है। आपने जितना ज्यादा किया किसकी फायदा के लिए किया भाई? आपने लिए किया ना, दूसरों के लिए कुछ किया नहीं ना। एक्चुअली एक बात बताऊं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिर्तमायना। स्वार्थी बनना चाहिए, अगर भक्त बनना है तो स्वार्थी बनना चाहिए। ये भक्ति एकमात्र व्यक्ति है जो स्वार्थी है, क्योंकि उसको मालूम है मैं जितना ज्यादा वैष्णव की सेवा करूंगा मेरी फायदा है, मैं जितना ज्यादा भगवान की सेवा करूंगा मेरी फायदा है। यही वास्तविक स्वार्थ है। जो तथागत सोचते हैं मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं सबके लिए करूंगा, होते कौन हो तुम? हु आर यू? खुद कंगाल, खुद भिखारी, कुछ नहीं है लेकिन करने वाला, हु आर यू टू डू? अमी तो कंगाल, कहो कौन सा भजन है ना, कृष्ण कृष्ण बोली, अमी तो कंगाल। ये आध्यात्मिक भावना है। कंगाल कुछ कर सकता है क्या? कंगाल कुछ नहीं कर सकता है। तो जब वैष्णव सेवा भी करने जाते हो, किसकी फायदा के लिए कर रहे हो? मेरी फायदा के लिए कर रहे हो। मान लो कोई वैष्णव बीमार है तो उसको सेवा किया तो किसका फायदा हुआ? और ये सोचोगे मैं उनका कुछ किया तो बहुत ही दृष्टिकोण है, शौबरी मुनि है। अगर वो दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति उस प्रकार का तथाकथित सेवा करता है तो उसका भी नुकसान है और खुद का भी नुकसान है। अगर कोई सोचे कि मुझे वैष्णव का सेवा करने का मौका मिल रहा है जिसकी वजह से मेरी उद्धार हो जाए, वो उसके लिए भलाई है और हमारे लिए भी भलाई है। तो इस तरीके से वैष्णव सेवा करना चाहिए। या हाँ यस, दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, नेवर। सबका अपना अपना कर्म है, एवरीबडी हैज देयर कर्मा, दे हैव टू अंडरगो दिस, दे हैव टू। उनका कुछ कोई है ही नहीं, प्रारब्ध कर्मों को अनुभव करना ही पड़ेगा। इसलिए मान लो कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, अपने कर्मों के हिसाब से दुखी हो रहा है, तो आप क्या करोगे? जाओगे उनको कृष्ण के बारे में थोड़ा सा बताओगे, थोड़ा सा शांत, ताकि वो व्यक्ति जो है कृष्ण का स्मरण कर सके, उस प्रकार का एक वातावरण बताओगे। आप हड़बड़ा जाओगे, आप चिंता मत करो, मैं इलाज करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, जितना हो सके उतना प्रयास करने के लिए। लेकिन कर्म तो कर्म को भोगना ही पड़ेगा उसको, ही हैज टू। देखिए एक उदाहरण इसके विषय में, श्रील भक्तिशांत ठाकुर तो अकाल पड़ा था बम्बई कलकत्ता में, यहाँ बंगाल में। तो अकाल से राहत दिलाने के लिए लोगों से क्या करने चंदा इकट्ठा किया, कांग्रेस पार्टी ने भी किया, उसने भी किया, उस समय के बड़े बड़े स्वतंत्र नेता लोगों ने किया, गौड़ियापट ने भी किया, क्योंकि गौड़ियामठ जो है गाँव गाँव में सब जगह फैल गया था, वो सबसे ज़्यादा धन जो है गौड़ियामठ ने इकट्ठा किया था। और श्री बक्सिंद सागर ने क्या किया, वो सारा धन जो आया था उस सारा धन से उन्होंने क्या किया, डायरा बनाए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बनाए, लीलाओं की प्रदर्शनी बनाया, और सबको प्रदर्शनी को बैलगाड़ियों के ऊपर रखा, कम से कम 50 बनाए, और भक्तों को लेकर कीर्तन करते गांव गांव गए। अब देखिए राहत के नाम पे जितने भी धन इकट्ठा हुआ था उससे क्या किया उन्होंने, हाँ, लीला का प्रदर्शनी किया और कीर्तन किया और गांव गांव जाकर प्रवचन देते थे, प्रसाद बांटते थे। अब ये देख के पूरा जितने भी स्वतंत्रता के नेता लोग एकदम बड़ा सा धारणा किए बाग बाजार के सामने, बाग बाजार का मंदिर जो है उसके सामने इतना बड़ा धारणा किए, किसी का हिम्मत नहीं आके बक्सियंस ठाकुर से बात करने की, किसी का भी हिम्मत नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात है उस समय स्वतंत्रता नेता। तो दो दिन तीन दिन हुआ तब बक्सियंस ठाकुर को खबर मिला, मुझे क्या हो रहा है, तो उनके शिष्य ने कहा कि आपके ऊपर धारणा कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया। बक्सियंस ठाकुर उधर पहुंचे उनके पास, एकदम सब लोग एकदम घबरा गए। बक्सियंस ठाकुर क्या कर रहे हो उधर, तो एक व्यक्ति ने कहा आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, फिर बड़ा बड़ा बोलना शुरू किया। बक्सियंस ठाकुर सब शांति से सुने, एक ही शब्द बोला, अकाल क्यों आया मालूम है आप सबको, सब चुप। खाली एक शब्द बोल के वापस आया बक्सियंस ठाकुर, बाद में सब धारणा वरना सब बंद हो गया। अकाल क्यों आया, क्योंकि संकीर्तन नहीं हो रहा है, इसी की वजह से अकाल आया। तब बोलोगे तो जी क्या हमको भी ऐसे करना चाहिए, जब मान लो कि कोई बाढ़ आया तो लोगों को प्रसाद नहीं देना चाहिए, हम उसका एडवांटेज लेते हैं, बाढ़ आता है ना इस्कॉन का नाम हो जाए, इससे जाके खिचड़ी बांटते, ये मत सोचो खिचड़ी बांटते बेचारा दुखी है भूखे मर जाएगा, नहीं। हाँ एक बार ऐसे एक भक्त मुझे प्रश्न पूछा, प्रभु जी वो कुछ हुआ था सुनामी आया था उस समय ना, तो प्रभु जी हमको जाना चाहिए बेचारे बहुत ज़रा दुखी लोग हैं। मैंने कहा ऐसा विचार तो मत जाना, ऐसा विचार आए तो प्रभु जी अच्छा मौका है हमारे लिए। न्यूज़पेपर में ऐड आएगा, इस्कॉन वाले भी कुछ करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर ऐसा विचार है तो निश्चित रूप में जाना। तुम सोचो कि वो लोग दुखी है उसको बचाने के लिए जाओगे, खुद ढूंढ रहे संसार सागर में वो क्या बचाओगे। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल थॉट। सौबरी मुनि ने जो दया दिखाया, समस्या क्या थी, समस्या है कि आध्यात्मिक विचार नहीं थी उस दया में। तो आध्यात्मिक विचार जहां नहीं होता है वो जिस जो जो विचार जिसका है वो भी दुखी है, उन विचार के द्वारा जो उसके पात्र बनते हैं वो भी दुखी है, समस्या है। दैट इज बाय स्पिरिचुअल थॉट, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना, स्पिरिचुअल विजन होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज वो ये बात है। तो हम जब वैष्णव की सेवा भी करने जाते हैं क्या दृष्टिकोण से करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। दैट इज दैट ये बात विचार। और कोई प्रश्न एंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ किसको, अच्छा अगर शौबरी मुनि को सच में, मैं तो कोई कहीं बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा स्पेक्युलेशन बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए था, आपका प्रश्न इस तरह जवाब देना पड़ेगा। शौबरी मुनि पानी के नीचे हैं, ध्यान कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, किसके ऊपर तपस्या करना चाहिए, कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, पता नहीं अगर नाम संकीर्तन कर पाते कि नहीं कर पाते। शौबरी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से अगर अगर पूरा पूरा आध्यात्मिक शक्ति से खाली उनकी उपस्थिति जो है ना वो मछलियों को हित कर लेती, खाली उनकी उपस्थिति। एक मछलियों का बात आया कि आचार्य का दक्षिण भारत में श्रीरंगम जाओगे उधर एक श्रीरंगम मंदिर में पुष्करणी जिसका नाम है चंद्र पुष्करणी, श्रीरंगनाथ जी आने से पहले चंद्र आकर बड़े तपस्या किया था, चंद्र अपने शाप विमोचन के लिए बड़ा तपस्या किया। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य प्रसाद ग्रहण किए, प्रसाद ग्रहण करके वो पुष्करणी के पास, पुष्करणी मतलब तालाब सरल भाषा में तीर्थ, जो तो उधर जाके अपने शिष्यों ने पानी डाला, हाथ धोए, हाथ धोए थे क्या हुआ, चार पांच चावल के दाने थे हाथ में, वो नीचे गिरे पानी में गिरे, और जैसे पानी में गिरे तो चार पांच मछलियों ने क्या किया, वो तुरंत मछली कुछ भी डाल दो खाता है ना, वो खाए तो उनके सारे शिष्यों ने देखा ये मछलियों ने चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ पहुंच गए। शौबर मुनि वो करते, यानी एक शुद्ध भक्त का खाली हाथ धोने का काल उद्धार करता है, ध्यान से सुन रहे हैं ना, एक शुद्ध भक्त का हाथ धोया हुआ जो जल जो है ना, वो एक व्यक्ति को वैकुंठ पहुंचा सकता है। इसलिए खाली शुद्ध भक्त बनना है हमको। वी जस्ट हैड टू बिकम प्योर डिवोटी। दूसरों को उद्धार करने के लिए क्या करना होगा, कोई प्रश्न पूछे, शुद्ध भक्त बनो। दूसरों को दया दिखाने के लिए क्या करना होगा, शुद्ध भक्त बनना है। बिकम ए प्योर डिवोटी, यू विल डिलीवर द एंटायर वर्ल्ड। ऐसा कहा गया ना चैतन्य भागवत में। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त के पास इतना कैपेसिटी है कि पूरा ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है, लेकिन उस प्रकार का बनना है, समस्या वो है। पॉइंट, बिकम ए प्योर डिवोटी। तो प्रभु जी हम तो फिर शुद्ध भक्त बनेंगे, अभी प्रचार बाद में करेंगे। अरे प्रचार आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो। एक बहुत मेजर स्टेटमेंट है, मैंने सुनाता, बार बार सुनाता हूँ। आप मान लो 10 साल तक एक जगह जाके प्रवचन दिया 50 लोगों को, 50 लोगों को एक 10 साल तक प्रवचन देने के बाद, 10 साल के बाद एक भी शुद्ध, एक भी अच्छा भक्त बनाना, तो आपका जीवन सक्सेस। कौन है वो एक भक्त? खुद खुद। बाकी बने ना बने, लेकिन खुद भी बन गया ना सक्सेसफुल। तो आप जाओगे तो भक्त बनाने नहीं जा रहे हो, भक्त बनने जा रहे हो, समझ रहे हैं ना। कृष्ण के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, कृष्ण के बारे में कुछ सुनने का मौका मिल रहा है। कई ब्रह्मचारी को मेरे 10 बार समझाया, प्रभु जी आप जाओ क्लास लो प्रवचन लो। वो जी मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। मैं कहां बोल रहा हूं क्वालिफाइड हूं। मैं कहां बोल रहा हूं, मतलब कि करने के द्वारा कुछ तो कुछ मिल जाता है। अगर क्वालिफिकेशन का इंतजार करें तो ना वो मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला है। ये है, यू शुड वेरी केयरफुल, क्योंकि दया की बात आई, इसलिए मैंने प्रचार के साथ जोड़ के इस बार आज का क्लास दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।